नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, आर्किटेक्चर पैटर्न्स विद पाइथन, हैरी पर्सिवल और बॉब ग्रेगरी की व्यावहारिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पुस्तक है। यह उन पाइथन डेवलपर्स के लिए लिखी गई है जिनके अनुप्रयोग छोटे स्क्रिप्टों से बढ़कर जटिल व्यावसायिक प्रणालियां बन रहे हैं। पुस्तक का उद्देश्य केवल पैटर्नों की परिभाषाएं देना नहीं, बल्कि उन्हें परीक्षण योग्य और बदलने में आसान कोड में क्रमशः लागू करना है। इसका केंद्रीय प्रश्न है कि डोमेन नियमों को वेब फ्रेमवर्क, डेटाबेस और संदेश अवसंरचना जैसे बाहरी विवरणों से कैसे अलग रखा जाए। लेखक एक विकसित होते उदाहरण के माध्यम से टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, डोमेन ड्रिवन डिजाइन, हेक्सागोनल आर्किटेक्चर, रिपोजिटरी, यूनिट ऑफ वर्क, कमांड, इवेंट और मैसेज बस को जोड़ते हैं। पुस्तक का झुकाव पाइथन की सरल और मुहावरेदार शैली की ओर है, इसलिए यह भारी एंटरप्राइज ढांचों की नकल नहीं करती। इसका लक्ष्य हर परियोजना में जटिलता जोड़ना नहीं, बल्कि उस बिंदु को पहचानना है जहां स्पष्ट सीमाएं और स्वचालित परीक्षण परिवर्तन की लागत घटाते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डोमेन मॉडल को तकनीकी ढांचे से अलग रखने का तर्क। पुस्तक का आधार यह है कि किसी व्यावसायिक समस्या के महत्वपूर्ण नियम डोमेन मॉडल में रहने चाहिए, न कि वेब हैंडलर, ORM मॉडल या डेटाबेस क्वेरी में बिखरे होने चाहिए। उदाहरण के लिए, स्टॉक आवंटन जैसा नियम किसी रिक्वेस्ट को पार्स करने वाले हिस्से का काम नहीं है। उसे ऐसे ऑब्जेक्टों और विधियों में व्यक्त करना बेहतर है जो व्यापार की भाषा बोलते हों। यह अलगाव डोमेन ड्रिवन डिजाइन की उस सोच से जुड़ता है जिसमें एंटिटी की पहचान समय के साथ बनी रहती है, वैल्यू ऑब्जेक्ट अपने मान से पहचाने जाते हैं और एग्रीगेट संगति की सीमा तय करते हैं। पुस्तक इन अवधारणाओं को केवल शब्दावली की तरह नहीं रखती, बल्कि इनके माध्यम से यह पूछती है कि कौन सा नियम किस ऑब्जेक्ट का दायित्व है। परिणाम स्वरूप, परीक्षण डेटाबेस या नेटवर्क के बिना सीधे व्यावसायिक व्यवहार जान सकते हैं। यह डिजाइन परिवर्तन के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि UI, फ्रेमवर्क या स्टोरेज बदलने पर मूल नियमों को फिर से लिखना आवश्यक नहीं रहता। लेखक यह संकेत भी देते हैं कि हर साधारण प्रोग्राम को एग्रीगेट और परतों में बांटना उचित नहीं है। जटिलता तभी सार्थक है जब डोमेन नियम, कई उपयोग मामले या लगातार बदलती आवश्यकताएं वास्तव में ऐसी सीमा की मांग करें। दूसरा, डिपेंडेंसी इन्वर्जन और पोर्ट्स एडेप्टर से परीक्षण योग्य सीमाएं। पुस्तक में हेक्सागोनल या चेन आर्किटेक्चर का व्यावहारिक अर्थ डिपेंडेंसी इन्वर्जन के माध्यम से स्पष्ट होता है। सामान्य अनुप्रयोगों में व्यावसायिक कोड अक्सर सीधे डेटाबेस लाइब्रेरी, वेब फ्रेमवर्क या संदेश सेवा को बुलाता है। इससे भीतर का नियम बाहर की तकनीक पर निर्भर हो जाता है और परीक्षण धीमे तथा नाजुक बनते हैं। इसके विपरीत, पुस्तक का प्रस्ताव है कि डोमेन और सेवा परत अपनी जरूरत को छोटे इंटरफेस अर्थात पोर्ट के रूप में व्यक्त करें। SQL एल्केमी, फ्लास्क या अन्य वास्तविक तकनीकें उन पोर्टों के एडेप्टर बने। इस दिशा को पलटने से उच्च स्तर की नीति निम्न स्तर के विवरण को नियंत्रित करती है। पाइथन में यह जरूरी नहीं कि भारी औपचारिक इंटरफेस बनाए जाए, क्योंकि डक टाइपिंग और सरल प्रोटोकॉल पर्याप्त हो सकते हैं। लेकिन अनुशासन आवश्यक है, क्योंकि केवल फोल्डर अलग कर देने से निर्भरताएं नहीं बदलती। पुस्तक परीक्षणों के दो स्तरों का उपयोग करती है। तेज यूनिट परीक्षण शुद्ध डोमेन नियम जांचते हैं, जबकि सीमित इंटीग्रेशन परीक्षण वास्तविक एडेप्टर और डेटाबेस के व्यवहार की पुष्टि करते हैं। यह संयोजन नकली ऑब्जेक्टों पर अति निर्भरता से बचाता है और फिर भी अधिकांश फीडबैक जल्दी देता है। इस प्रकार आर्किटेक्चर का मूल्य तकनीकी सुंदरता नहीं, बदलने योग्य और भरोसेमंद व्यवहार है। तीसरा, रिपोजिटरी और यूनिट ऑफ वर्क से स्थायित्व तथा लेन देन का नियंत्रण। डेटाबेस को सीधे डोमेन मॉडल में घुसाने से व्यावसायिक नियम और स्थायित्व संबंधी चिंता एक दूसरे में मिल जाते हैं। पुस्तक रिपोजिटरी पैटर्न को ऐसी सीमा के रूप में रखती है जो संग्रह जैसी सरल भाषा में डोमेन ऑब्जेक्टों तक पहुंच देती है। सेवा परत यह पूछ सकती है कि किसी पहचान वाला एग्रीगेट प्राप्त करो या नया एग्रीगेट जोड़ो बिना हर जगह SQL या ORM क्वेरी लिखे। इससे इन मेमोरी रिपोजिटरी के साथ तेज परीक्षण संभव होता है और वास्तविक डेटाबेस एडेप्टर अलग से सत्यापित किया जा सकता है। इसके साथ यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न एक उपयोग मामले के भीतर हुए बदलावों को एक लेन देन में समेटता है। वह यह तय करता है कि कब कमिट करना है, कब रोल बैक करना है और किन रिपोजिटरी को उस काम में शामिल करना है। यह केवल कोड व्यवस्थित करने का उपाय नहीं है। अनेक बदलावों वाले ऑपरेशन में आंशिक लेखन से गलत व्यावसायिक स्थिति बन सकती है, इसलिए संगति की जिम्मेदारी स्पष्ट स्थान पर होना जरूरी है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि इन पैटर्नों का उद्देश्य डेटाबेस को अदृश्य जादू बनाना नहीं है। इंटीग्रेशन परीक्षण फिर भी आवश्यक है, क्योंकि मैपिंग, लेन देन सीमा और वास्तविक बाधाएं केवल असली अवसंरचना पर ही सामने आती है। लाभ यह है कि ये विवरण पूरे अनुप्रयोग की बजाय सीमित किनारे पर केंद्रित रहते हैं। चौथा कमांड डोमेन इवेंट और मैसेज बस द्वारा कार्यप्रवाह का समन्वय पुस्तक में कमांड और इवेंट का अंतर आर्किटेक्चर के लिए निर्णायक है। कमांड किसी इरादे का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कोई काम करने का अनुरोध, उसे अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वैधता या व्यावसायिक नियम पूरे ना हो। इवेंट किसी तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है कि कुछ हो चुका है, जैसे आवंटन पूरा हुआ या स्टॉक उपलब्ध नहीं रहा। इस भेद से सेवा कोड में सीधे एक दूसरे को बुलाने वाली लंबी श्रृंखलाएं कम की जा सकती है। एग्रीगेट महत्वपूर्ण डोमेन घटना दर्ज करता है और मैसेज बस उस घटना के लिए पंजीकृत हैंडलरों तक उसे पहुंचाती है। कोई हैंडलर सूचना भेज सकता है, दूसरा नया कार्य शुरू कर सकता है और तीसरा बाहरी प्रणाली से समन्वय कर सकता है। इस डिजाइन का लाभ यह है कि नए परिणाम जोड़ने पर मूल निर्णय लेने वाले कोड को कम बदलना पड़ता है, फिर भी पुस्तक इसे जादुई समाधान नहीं बताती। इवेंट आधारित प्रवाह में क्रम विफलता, दोहराव और अवलोकनीयता जैसी समस्याएं आती है, इसलिए इवेंट के अर्थ स्पष्ट होने चाहिए और हैंडलर यथासंभव छोटे तथा परीक्षण योग्य होने चाहिए। इन प्रोसेस मेमोरी संदेशों से बाहरी मैसेजिंग तक क्रमिक विकास की सोच भी महत्वपूर्ण है। हर इवेंट के लिए तुरंत वितरित ब्रोकर अपनाना आवश्यक नहीं, लेकिन स्पष्ट इवेंट सीमाएं भविष्य के एकीकरण के लिए तैयार करती है। अंत में CQRS और इवेंट ड्रिवन माइक्रोसर्विसेज की उपयोगी पर सीमित भूमिका। पुस्तक कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन को इस विचार के रूप में प्रस्तुत करती है कि स्थिति बदलने वाले काम और जानकारी पढ़ने वाले काम की जरूरतें अलग हो सकती है। कमांड पक्ष में व्यावसायिक नियम, एग्रीगेट और संगति अहम है। क्वेरी पक्ष में उपयोगकर्ता को तेज और सुविधाजनक रूप से डेटा दिखाना प्राथमिक हो सकता है, इसलिए वह डोमेन मॉडल की पूरी संरचना से गुजरने के बजाय सीधे उपयुक्त रीड मॉडल या क्वेरी का उपयोग कर सकता है। यह विभाजन उन स्थितियों में लाभकारी है जहां रिपोर्टिंग या स्क्रीन के लिए डेटा का आकार लिखने वाले मॉडल से भिन्न हो, किंतु इसका अर्थ अनिवार्य रूप से अलग डेटाबेस, जटिल प्रतिकृति या पूर्ण वितरित व्यवस्था नहीं है। लेखक का व्यावहारिक रुख यह है कि आवश्यक जटिलता ही जोड़ी जाए। इसी प्रकार इवेंट ड्रिवन माइक्रोसर्विसेज को वे तब उपयोगी मानते हैं जब अलग सेवाओं को ढीले ढंग से जोड़ना हो। एक सेवा का प्रकाशित इवेंट दूसरी सेवा को उसके काम की सूचना दे सकता है बिना दोनों को सीधे जोड़ने के, लेकिन वितरण के साथ अंततः संगति, पुनः प्रयास, संदेश की पुनरावृत्ति और संचालन संबंधी बोझ आता है। इसलिए पुस्तक का वास्तविक सबक माइक्रोसर्विसेज का प्रचार नहीं है, वह सीमाएं, स्पष्ट संदेश और स्वतंत्र परीक्षण योग्य घटक बनाने पर जोर देती है ताकि प्रणाली की जरूरत बढ़ने पर उसे सावधानी से विकसित किया जा सके। निष्कर्ष में आर्किटेक्चर पैटर्न्स विद पाइथन उन मध्यवर्ती और अनुभवी पाइथन डेवलपर्स के लिए सबसे उपयोगी है जो पहले से वेब अनुप्रयोग, डेटाबेस और स्वचालित परीक्षणों के साथ काम कर चुके हैं, पर बढ़ती कोड बेस में नियमों, अवसंरचना और कार्यप्रवाहों को अलग रखने का व्यावहारिक तरीका चाहते हैं। टीम लीड, बैकएंड इंजीनियर और ऐसे पाठक जो डोमेन ड्रिवन डिजाइन को पाइथन की भाषा में समझना चाहते हैं इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। शुरुआती प्रोग्रामर को इसके उदाहरणों के लिए पाइथन, परीक्षण और रिलेशनल डेटाबेस की बुनियादी समझ चाहिए। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह पाठक को छोटे तेज यूनिट परीक्षणों और वास्तविक इंटीग्रेशन परीक्षणों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। साथ ही यह बताती है कि रिपोजिटरी, यूनिट ऑफ वर्क और मैसेज बस जैसे पैटर्न कब वास्तविक सीमाओं को स्पष्ट करते हैं और कब वे अनावश्यक बोझ बन सकते हैं। समान विषय की कई पुस्तकों के विपरीत इसका अंतर पैटर्नों की सूची में नहीं बल्कि एक क्रमिक पाइथन उदाहरण में है जहां डिजाइन दबावों के जवाब में बदलता है। यह जावा या C# केंद्रित एंटरप्राइज शैली को यथावत आयात करने के बजाय पाइथन की संक्षिप्तता के अनुकूल विकल्प खोजती है। फिर भी पाठक को इसे कठोर खाका नहीं मानना चाहिए, छोटे और स्थिर अनुप्रयोग के लिए सरल संरचना बेहतर हो सकती है। जटिल डोमेन, बदलती आवश्यकताओं और कई एकीकरणों वाली प्रणालियों में यह पुस्तक निर्णय लेने की ठोस शब्दावली और तकनीक देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं हैरी पर्सिवल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।